7 AMD نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
عدنان الوی پریزیڈنٹ لائف ٹائم گروپ عدنان الوی کو کون نہیں جانتا آپ پچھلے 15 سالوں سے اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح اپنی انکم اور اپنی ویلتھ کو انکریز کیا جا سکتا ہے آپ کے لیے ہمیشہ یونیک اور انوویٹو انویسٹمنٹ آئیڈیاز لے کر آتے ہیں اگر آپ آج کی بدلتی ہوئی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسوں کو زیادہ سیکیور رکھتے ہوئے میکسیمم پروفٹ بنائیں تو آج عدنان الوی سے رابطہ کریں 416-301-0249
دبئی جانا ہے
وہ کیوں
بیٹی کی شادی ہے سونے اور ڈائمنڈ کی یونیک جولری کی خریداری کرنی ہے
چھوڑو جی ایک دفعہ چوپڑا جیولر کو وزٹ کرو دبئی سے بہتر ہے گولڈ جڑاؤ زیورات ڈائمنڈ جڑاؤ ڈائمنڈ جیولری چوڑیاں کڑے پینڈنٹ ہر زیور یونیک ہے اور بے شمار ویرائٹی ہے مزے کی بات ہے ڈسکاؤنٹس بھی بہت سارے ہیں کس کس کا بتاؤں سینگ از بلیونگ
ایڈریس دیں
1066 ایلبین روڈ Albion Islington ki nukkar pe what a beautiful collection Chopra Jewelers 416-744-7534 Canada mein Dubai Chopra Jewelers
لیمپائی اب پاکستان انڈیا اور دوسرے ممالک میں پیسے ٹرانسفر کا آسان حل کینیڈا سے پاکستان پیسے بھیجیں وہ بھی منٹوں میں اپنی پہلی ٹرانزیکشن اپ ٹو $50 پر 10% کیش بیک حاصل کریں پرومو کوڈ یوز کریں EZ10 لیمپائی کی ایکسکلوسیو آفر سے آج ہی فائدہ اٹھائیے وزٹ lampai.com LEMFI آج ہی فری ایپ اپنے اینڈرائڈ یا ایپل فون میں ڈاؤن لوڈ کیجیے لیمپائی سیف سیکیور اینڈ فاسٹ منی ٹرانسفر
ہو 416-502-8000 سٹریس چاہے لاکھ نہ ہوئے یا کاکنا اس زندگی مشکل کر دیتا ہے باقی باتیں ایک طرف آپ کے فائنینشل سٹریس کا حل ہے شہراز شفیق جن کے پاس ہیں ملینز آف ڈالرز کے پرائیویٹ فنڈز لاسٹ منٹ کلوزنگز ہوں یا ڈیفیکلٹیز سبھی کے لیے شہراز شفیق 416-502-8000 لائسنس نمبر 10845 انڈیپینڈنٹلی اونڈ اینڈ آپریٹڈ
MX Travels 5-star حج packages آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں کنفیوزنگ حج ایپ کے ہاتھوں پریشان مت ہوں نیت آپ کی بلاوا رب کا انتظام و اہتمام MX Travel کا ایئر ٹکٹس مدینہ مکہ منا ٹینٹس عرفات کیمپ حرم کے سامنے ہوٹل کی سہولت سے لے کر ڈاکومنٹیشن ویزا ہر چیز صرف MX Travel کے ساتھ لمیٹڈ سیٹس کال MX Travel
Elite Hajj 2025 packages exclusive special deals for US Canadian Pakistani passport holders limited seats
book now call 416-599-5200 416-599-5200
خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے آج ہی مجھے کال کریں آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM पर और देख रहे हैं हमें ई आवाज टीवी पर। और अब आपके साथ आ गई हैं शाजिया मलिक साहिबा गर्मा गर्म और रंगारंग खबरें लेके। आइए उनके लिए शैंपेन कलर का कारपेट बिछाते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज उनका हाल क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसी हैं आप?
यूएस हम ठीक हैं, तुम कैसे हो?
शुक्र
है आज मंडे के दिन तुम काली टी शर्ट नहीं पहन के
आए। जी वो
नहीं नहीं, तुम बाकी सब चीजें छोड़ो, तुम आज मंडे के दिन जो काली टी शर्ट नहीं पहन के आए हो ना, मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी।
मैं इसलिए मंडे नहीं पहनी क्योंकि आज जो है वो टूडो साहब जो है वो थोड़े परेशान है।
हाँ।
मैं नहीं चाहता कि काली कपड़े पहन के और
अच्छा तुम उसको और परेशान कर रहे हो, ये नीले कपड़े पहन के कंजर्वेटिव का कलर पहन के
हैं। ना खून बढ़ता है,
ये नीले कपड़े पहन के
कंपटीशन बढ़ता है। तो यार मैं कुछ भी हो जाए मैं रिजाइन नहीं करूंगा।
अच्छा अच्छा,
मैंने अभी टेक्स्ट किया उनको, रिजाइन
अच्छा,
नहीं करिए, रिजाइन नहीं करें।
हाँ, ऐसे ही गवर्नमेंट को
उनको बना दिया डोमिनिक ली ब्लांक।
हाँ, हाँ जी हाँ जी, वो हमारे पास
और
हाँ।
आगे आप खबरें बताएंगी।
हाँ जी हाँ जी,
तो मेरे हिसाब से रिजाइन नहीं करना चाहिए,
नहीं करना चाहिए।
इतना बर्बादी कर ली है, कुछ दिन और कर लो,
6 महीने और सही,
और अब क्या कर लेना
है?
मतलब मेरा ही होता है कि घर तक पहुंचा दो, मेरा हमेशा से ये रहा है कि यार अगर
पकड़ के
घर तक पहुंचा दो,
पहुंचाओ
तो मेरे साथ
यानी कि पूरी तरह बर्बाद करके जाओ ना,
आधा
रास्ते पे नहीं छोड़ना।
नहीं नहीं, बहरहाल उनको कहते ना कि धोखा दिया आज मेरे हिसाब से मैडम ने धोखा दिया। और जितना प्यार मोहब्बत ट्रूडो साहब ने
इनको बहुत दिखाई,
इनको
बहुत ज्यादा, इनको इतनी इतनी बड़ी पोजीशन देते गए। हाँ, ट्रस्ट किया। लास्ट ईयर भी आपको पता है जब ये अपना फॉल वो दे रही थी स्टेटमेंट, तो लोगों ने पूछा ट्रूडो से कि भाई आप, रिपोर्टर्स ने पूछा, उन्होंने कहा कि आपको इन पे ट्रस्ट है? वो कहते हैं मैं बिल्कुल इन पे ट्रस्ट करता हूँ, पूरी तरह ट्रस्ट करता हूँ।
अब आपके और मेरे जो $250 रिबेट आ रहे थे,
पता नहीं 2 महीने के लिए और आएंगे या नहीं,
तो मुझे शक है। हम तो यार जीएसटी जो चल रही थी ये भी वापस ना हो जाए,
ना हो जाए, और हम तो यूरोप का टूर बना के बैठे थे।
मैं तो 250 जुड़े थे, 1775 में 250 जुड़ गए थे, कुछ $20 मॉर्गेज से कम हो गई है। तो मेरा तो टूर, मैं तो टिकट बुक कराने के चक्कर में।
एग्जैक्टली 2000 थे तुम्हारे पास, तो तुम तो सारा यूरोप देख सकते,
पूरा यूरोप देख लेता मैं। लेकिन अब ये 250 माइनस हो गए,
अब ये माइनस हो गए, अब तुम अब यूरोप तुम्हारा पूरा एक ही राउंड में पूरा यूरोप देखने का जो ड्रीम था ना वो आधा रह गया है ये इनकी इन हरकतों की वजह से। वेरी सैड, वेरी सैड।
कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं उस पर भी
देखो जरा, सारा यूरोप
तलवार चलाती,
ये अब कोई बहुत बड़ा ख्वाब है तो सोचो, हमने कौन सा व्हाइट हाउस मांग लिया किसी से?
यूरोप ही तो घूमने जा रहे
हैं, सारा यूरोप ही तो घूमने जाए, नुक्कड़ में तो है, बाजू में तो है।
देखो लंदन आपके
बाजू में
3.5 घंटे की
बिल्कुल बाजू
ड्राइव पर लंदन है, थोड़ा सा और आगे पेरिस, आगे पीछे
नहीं, लंदन तो बगल में,
पेरिस चले जाएं
बाजू में,
पेरिस चले जाएं, गाड़ी गाड़ी हम तो गाड़ी लेके पेरिस चले जाते
हैं, बिल्कुल
लंदन भी चले जाते, पेरिस
लंदन तो वो उसमें से वो ब्रिटिश चैनल से हम चले जाते हैं ना वहाँ से,
लेकिन बाहर
लेकिन इनको हमारी खुशी जो है ना वो इनसे बर्दाश्त नहीं।
$250 जो माइनस होंगे ना,
ये जुर्म का इनको जवाब देना पड़ेगा,
इसका इस पे मैं प्रोटेस्ट करूंगा।
हाँ बिल्कुल, बाहर चंडा लेके हम खड़े हैं
भाई जान, ये आपने जो $250 वाला जो गेम किया है ना,
और ये जो मेरा ख्वाब आपने खराब किया है,
चूर कर दिया।
हाँ,
जिस दिन से अनाउंस किया था उस दिन से मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं यूरोप जाऊंगा।
हाँ ना, वही तो,
एक एक पाई जमा की मैंने,
देख लो।
चलो,
बहुत बुरा किया मेरे तुम्हारे साथ, बहुत बुरा किया, मुझे बड़े अफसोस है।
अब ये डोमिनिक साहब आ गए, हो सकता है ये 300 कर दें उसको।
अच्छा अच्छा, पूरी तरह बर्बादी हो जाए,
ये 250 को 300 कर देंगे,
ठीक है,
और देखिए क्या होता है,
क्या होता है। चलो जी ठीक
है, गर्मा गर्म खबरें सुनाएं जी, क्या
हाल है? हाँ जी, अच्छा जी जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ऑन्टारियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे। यानी पहला ही आमिर ऐसा पकड़ा देता है कि उससे बाद जड़ा है ना मैनू वो खाब होने शुरू हो जाते हैं खाने दे, तो मैं खबरें जड़ियां ने खाक सुनानियां तुहानू। बहरहाल जी, अच्छा जनाब, ऑन्टारियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट, उसके दो रेस्टोरेंट हैं जी, आप जाएं। एक है मिसेस सागा में, इसका नंबर है 9052323663, और एक है ओकविल में 9052262294। डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे, अब मिसेस सागा में नहीं रिजवे, क्योंकि मिसेस सागा जो है वो वाला दूसरा इनका था क्लिनिक, और ये जो रिजवे में है ये नया इन्होंने बनाया है, ठीक है जी, वो था मिसेस सागा रोड पे, ये अब बना लिया रिजवे प्लाजा में, तो ये अब डिफरेंट है, हैं दोनों मिसेस सागा के अंदर ही, ठीक है जी। तो ये जो है वो कहते हैं कि आपको रूट कनाल कराना है, कोई भी इनविजिलाइन वगैरह लगवाना है, डेंटल क्राउन्स लगाने हैं, तो आप डॉक्टर नाजिया रहमान को कॉल करें, इनका नंबर है 9058200900। एंड जनाब राजा थे बादशाह, जिन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी, आमिर थे टेरो, पैसे बचाए, यूरोप के टूर पर इसीलिए जा रहा था, 1775 अगर आप भी बचाना चाहते हैं तो आप भी प्लीज राजा बादशाह जी को कॉल करें, इनका नंबर है 6472903773। ऑल स्टेट के साथ ये होते हैं, और जी लम्मी फाई ठीक है जी। लेम्फाई जो है अगर आपको रिलायबल तरीके से अपने पैसे फौरन घर भेजने हैं तो आप लेम्फाई का यूज करें और 10% कैश बैक मिलेगा आपको फर्स्ट टाइम जब आप $100 भेजेंगे। आप यूज कर सकते हैं रेफरल कोड EZ10 ताकि आपको जो है वो अच्छे रेट्स मिलें। और आप स्कैन कर सकते हैं टू डाउनलोड ये वाला ऐप जो है अपने इस स्मार्टफोन पे। अच्छा जनाब, पहली तो जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो वही है, क्रिस्टिया फ्रीलैंड साहिबा जो है फॉरेन मिनिस्टर और सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो थी उन्होंने रिजाइन कर दिया। बड़ा एक बॉम्बशेल किस्म का उन्होंने जो लेटर है वो लिखा जस्ट बिफोर आवर्स बिफोर ये जो फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट आज पेश करनी थी लिबरल गवर्नमेंट ने उससे पहले। जगमीत सिंह साहब जो हैं उन्होंने जो है फिर इसके बाद फौरन कहा ट्रूडो साहब को कि ट्रूडो साहब आप भी रिजाइन करो। उन्होंने बड़ा एक्यूज किया लिबरल पार्टी को कि तुम लोग ऑब्सेस्ड हो, इन फाइटिंग्स तुम्हारे बीच में हो रही हैं, तुम लोग अपने जो मेन इश्यूज हैं कैनेडियंस के उनको इग्नोर कर रहे हो। और वो कहते हैं जी तुम लोग बिल्कुल सबक नहीं सीख रहे हो पीए पॉलियाज से जो कि कुछ भी करने को तैयार होता है और वो तुम लोगों का ये जो डेथ स्पाइरल चल रहा है उसका और जो ट्रंप साहब थ्रेट्स दे रहे हैं उसका फायदा जो है वो उठाना चाहता है। कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो बिल्कुल लोगों के बारे में नहीं सोचती है, जगमीत सिंह साहब ने कहा। और उन्होंने कहा जी कि वो फोकस्ड हैं बिग बिजनेसेस अल्ट्रा वेल्दी सीईओज के ऊपर और एट द एक्सपेंस ऑफ कॉमन पीपल। कंजर्वेटिव हाउस लीडर जो है एंड्रयू शीयर उन्होंने ये इस रेजिग्नेशन पे कहा कि इवन क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो है उसका कॉन्फिडेंस ट्रूडो की गवर्नमेंट पे नहीं है जो कि विच इज इन अ शैम्बल्स। और ट्रूडो को ये जो लेटर इन्होंने लिखा था या सोशल मीडिया पे जो अपीयर हुआ था ये क्रिस्टिया फ्रीलैंड का लेटर उसमें लिखा था जी कि फ्राइडे को आपने यानी कि ट्रूडो साहब आपने मुझे कहा था कि आप मुझे नहीं चाहते हैं कि मैं सर्व करूं एज फाइनेंस मिनिस्टर और आप मुझे एक और दूसरी कैबिनेट पोजीशन देना चाहते थे लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत सोच विचार किया और जब मैंने सोच विचार किया तो मुझे लगा कि मेरे लिए जो नेक्स्ट जो रास्ता है वो यही है कि मैं रिजाइन करूं। बाजी आपने अच्छा किया। अच्छा जनाब, इसके साथ ही फिर आज जो है वो फॉल जो इकोनॉमिक स्टेटमेंट थी वो जो आनी थी तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस जो है उसने ये जो लॉन्ग अवेटेड फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट थी ये फिर पेश की। इसको आज पेश किया गवर्नमेंट हाउस लीडर करीना गुल्ड ने क्योंकि फ्रीलैंड जो थी वो रिजाइन कर चुकी हुई थी और इसने जो है बेतहाशा बजट के अंदर आज डेफिसिट जो है $61.9 बिलियन का डेफिसिट जो है 2023-2024 के लिए बताया गया। और दबादब पैसे दियो जी तुसी ट्रूडो साहब उसनू यूक्रेन नू। 270 पेज का ये डॉक्यूमेंट था लेकिन इसके अंदर अपनी इकोनॉमिक विक्ट्रीज जो हैं उसकी बहुत ज्यादा बात की गई। उन्होंने कहा जी कि जो कनाडा है वो फर्स्ट G7 कंट्रीज में से है जहां पे कि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स इतने ज्यादा काटे हैं और हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 2% पे है क्योंकि गवर्नमेंट की प्रूडेंट पॉलिसीज हैं। वेरी गुड। जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने जो लास्ट ईयर फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो डिक्लाइन होता जाएगा, डेफिसिट टू जीडीपी जो है वो बिलो 1% रहेगा और हमारा डेफिसिट जो है वो $40.1 बिलियन के टारगेट पे रहेगा। तो क्या हुआ जी, बिल्कुल उसके उल्टे हुआ। इन्फ्लेशन 2% पे है जो कि वैसे बैंक ऑफ कनाडा कहता है कि विद इन आवर टारगेट है लेकिन डेफिसिट जो है वो 61.9 बिलियन को टच कर रहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि प्रोजेक्टेड जो डेफिसिट जो इस फिस्कल ईयर में आएगा वो 21.8 बिलियन होगा बियॉन्ड 40.1 बिलियन प्लेज। तो मतलब है सारी कैलकुलेशन जो थी बाजी हमारी की गलत थी जिसकी वजह से जो जाहिर है कि आप देख ही रहे हैं कि मार्केट की इस वक्त क्या हालत है। बच्चों के पास जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चे छोड़ छोड़ के जो है अमेरिका जा रहे हैं तो बस जाहिर है हालत इधर ऐसी होगी तो यही चलेगा। अच्छा जनाब, ट्रूडो साहब जो हैं उन्होंने अब आज फिर जिस वक्त इन्होंने रिजाइन किया तो उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी कैबिनेट के साथ बात कर रहा हूं कि क्या मैं प्रोरोगेशन करूंगा या कि मैं रेजिग्नेशन करूंगा, यानी कि क्या मैं जो है इसको सस्पेंड करूंगा पार्लियामेंट को या मैं रिजाइन करूंगा। और अभी इनकी बातचीत चल रही है, कल जरा कुछ पिक्चर जो है हमारी क्लियर होगी। इसके ऊपर फिर जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं पीए पॉलियाज साहब उन्होंने कहा जी कि ये केओस और डिवीजन और इनकी वीकनेस जो है वो अब निकल के सामने आ रही है लिबरल पार्टी की, ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। तो उन्होंने जितने भी पेट्रियाटिक लिबरल वोटर्स हैं उन्होंने कहा जी कि अपनी पार्टी को बिल्कुल तुम लोग जो है अब सपोर्ट मत करो, यू आर डिसेंट पेट्रियाटिक पीपल और इन्होंने लिबरल्स ने तुम्हें लेट डाउन किया है। मिनिस्टर ऑफ इनोवेशन साइंस एंड इंडस्ट्री फिलिप शैम्पेन आज जब जा रहे थे ये इस पे पार्लियामेंट हिल पे, तो इन पे इनको रिपोर्टर्स ने रोका। उन्होंने कहा जी हमने सुना है कि चूंकि अब फ्री लैंड चली गई है तो शायद आपको जो है नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए। उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे पास अपना वही जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है पोर्टफोलियो वही है। और फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपका प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस है। उन्होंने कहा जी मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। और इस वक्त बड़े वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा इस वक्त हमारा इंटरेस्ट जो है वो ये है कि हम कैनेडियंस को कैसे सर्व करेंगे और हम उसके ऊपर ख्याल रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट इज स्टिल फंक्शनिंग। मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट अहमद हुसैन जो है उन्होंने कहा जी कि मेरा भी फुल कॉन्फिडेंस है ट्रूडो के ऊपर। मिनिस्टर ऑफ इंडिजिनस सर्विसेज जो है पैटी हाइडो उन्होंने कहा जी कि मैं फ्रीडम जो फ्री लैंड जो है उसका डिसीजन मैं रिस्पेक्ट करती हूं एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट अलबत्ता जो है अनीता आनंद साहिबा वो बहुत ज्यादा जो है उनको वो थी अफसोस में थी। उन्होंने कहा शी वॉज वेरी गुड फ्रेंड और मैंने बड़ा क्लोजली उनके साथ काम किया है। तो अब ये जब इन्होंने रिजाइन किया है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इस सारी चीज को प्रोसेस करने के लिए। और अब जो न्यूज आई है कि जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर हैं डोमिनिक लीब्लॉ उन्होंने अब रिप्लेस किया है क्रिस्टिया फ्री लैंड को एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो जनाब ये काफी बैड न्यूज है क्योंकि जाहिर है कि 20 जनवरी को आने वाले हैं ट्रंप साहब और इनके चाहिए थी एक स्टेबल गवर्नमेंट। तो अब आने वाले दिनों में पता नहीं है कि क्या होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि कंजर्वेटिव पार्टी फिर से एक नो कॉन्फिडेंस मूव लेकर आए तो हो सकता है ट्रूडो साहब की जो है वो गवर्नमेंट गिर जाए। हो सकता है कि अर्ली इलेक्शन आए। तो ये एवरीथिंग इज वेरी वेरी इमिनेंट नाउ। इसके साथ साथ आज हाउसिंग मिनिस्टर शॉन फ्रेजर साहब जो हैं उन्होंने भी आज कहा कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा, अब मैं टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूं। आज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में वो बात कर रहे थे अहेड ऑफ कैबिनेट मीटिंग इन ओटावा। उन्होंने कहा जी कि मैं बहुत महीनों से ये सोच रहा था, जब मैं मेरी बैक सर्जरी हुई थी और मैं उससे रिकवर कर रहा था और मेरे बच्चे जो है अब ज्यादा और ये जो है वो यंग होने वाले नहीं है और उनको अपना बाप जो है दे नीड देयर डैड अराउंड। और उन्होंने कहा जी के जो है मैं चाहता हूं कि ये इसको मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम गुजारूं। वो कहते हैं जी कि हमने बहुत सारा सफर किया है, बहुत लेंथी हॉस्पिटलाइजेशन मेरी फैमिली ने सफर किए हैं और मेडिकल इंटरवेंशन थी। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि मेरी एक बच्ची पैदा हुई थी रूथ, सिर्फ वन डे की थी जब उसकी डेथ हो गई थी तो हम उसको मना जो है वो उसको मोर्न कर रहे हैं और उसको भी अभी तक जो है हम याद कर रहे हैं और ये जो है हमारे लिए सारा कुछ प्रोसेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ साथ जी जनाब जो ऑपरेशंस हैं एट कनाडा पोस्ट वो कल ट्यूसडे को जो है वो 8 बजे सुबह रिज्यूम कर जाएंगे। ये बात जो है कनाडा के इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोर्ड जो है उसने कहा है कि हमने इनको ऑर्डर किया कि वापस काम पे आएं। आपको पता है ये फ्राइडे को हमने आपको बताया था कि लेबर मिनिस्टर स्टीफन मैकिनियन है उन्होंने कहा कि ये 55,000 पिकेटिंग जो एम्प्लॉयज हैं इनको वापस बुलाया जाए अगर जो डील है वो डूएबल नहीं है बिफोर ईयर एंड। और उसके बाद उन्होंने कहा था जी कि ये जो कुछ भी बातचीत आप कर रहे हैं इसको मसले को आप हल करें। फिर उसके बाद जो कनाडा इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोर्ड था उसने कहा जी कि हम बिल्कुल क्राउन कॉरपोरेशन के साथ और यूनियन ऑफ पोस्टल वर्कर्स के साथ बात करेंगे जिनके के बीच में एक इम्पैस जो है वो चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर्स डायरेक्टिव फिर जो है ये लेबर बोर्ड जो है उसने एक्सटेंड किया था यूनियन के कॉन्ट्रैक्ट्स को थ्रू मे और उनको कहा था कि आपको अगर और टाइम चाहिए बार्गेनिंग टॉक्स के लिए तो आप फिर ये टाइम लें लेकिन लोग जो हैं वो काम पे वापस आएंगे। कनाडा के जो प्रीमियर्स हैं जी वो अब चाहते हैं कि एक जो रिलेशनशिप है कनाडा और यूएस के बीच में उसको जो है जरा बढ़ाया जाए। आज ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड साहब जो हैं वो ये मीटिंग को हेड कर रहे थे जिसमें कि 13 प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल जो लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट ट्रोनो के अंदर कर रहे हैं जिसके के अंदर फोर्ड साहब ने कहा कि हमको एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी बनानी चाहिए है क्योंकि ट्रंप साहब कॉन्स्टेंटली हमको 25% जो इम्पोर्ट टैरिफ्स लगाना चाहते हैं कैनेडियन और मैक्सिकन गुड्स के ऊपर तो उसके लिए हमको एक स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। प्रीमियर्स जो थे उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग इससे पहले ट्रूडो के साथ की थी टू डिस्कस द टैरिफ्स और उन्होंने उनको कहा था कि आपको और ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस के ऊपर ताकि जो ट्रंप साहब के एतराज हैं उनको टैकल किया जा सके। फोर्ड साहब ने आज जिस वक्त ये क्रिस्टिया फ्री लैंड का रेजिग्नेशन भी आया और ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है कंट्री के उसमें तो उन्होंने तमाम प्रीमियर्स को कहा कि हमको एक लीडिंग रोल लेना पड़ेगा और क्योंकि ये अगर हमने ऐसा रोल ना लिया तो तमाम प्रोविंसेस और टेरिटोरीज सफर करेंगी और इस वक्त हमको चाहिए कि हम सब लोग यूनाइटेड रहें। तो ये जनाब इन्होंने बातें की ठीक है जी। जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शोल्स वो जनाब ही हैज लॉस्ट टुडे कॉन्फिडेंस मूव इन जर्मनी, और जर्मनी के अंदर जो है पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गया है, जो कि दैट हैज पुट यूरोप्स मोस्ट पॉपुलस मेंबर, जो बिगेस्ट इकोनॉमी है, उसको बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया। और अब कहा जा रहा है कि अर्ली इलेक्शंस जो हैं फरवरी में आ सकते हैं। शोज जो है, जिस वक्त ये नो कॉन्फिडेंस मूव आई तो 207 वोटर्स ने उनके फेवर में वोट दिया। 733 सीट लोअर हाउस है, जिसको के बंग्सडैक भी कहते हैं। 394 ने इनके अगेंस्ट वोट किया और 116 ने एब्सटेन किया। तो इनको जो सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी 367 की टू विन, वो ये हासिल नहीं कर सके। इनकी गवर्नमेंट जो है एक्सट्रीमली अनपॉपुलर होती जा रही है, और वो कह रहे हैं जी कि ये जो थ्री पार्टी कोलिशन जो है ये बिल्कुल ठीक से नहीं चल रही है, और इसीलिए वो क्लैप्स भी की थी नवंबर 6 को, जब इन्होंने फायर किया था अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, क्योंकि बहुत ज्यादा जो डिस्प्यूट था वो चल रहा था टू रीवाइटलाइज जर्मनी स्टेग्नेट इकोनॉमी। इन्होंने कहा जी कि आप इकोनॉमी पे बिल्कुल ठीक काम, यानी कि आप देखो हर जगह इकोनॉमी के ही स्यापे हैं। इधर भी जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड है, इकोनॉमी के ही प्रॉब्लम्स थे जिसकी की वजह से उन्होंने भी रिजाइन किया। लीडर्स ऑफ सेवरल मेजर पार्टीज जो है उन्होंने अब जो है वो अग्री किया है कि इलेक्शन जो है फरवरी 23 को होने चाहिए, 7 months अर्लियर देन प्लान्ड। तो ये जनाब जो है काफी मुश्किलें आएंगी। जाहिर है कि ये सबसे बड़ी जो यूरोप की इकोनॉमी कलैप्स की है, तो फ्रांस जो है फ्रांस के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो यही दो जो है फ्रांस और जर्मनी यूरोप की बड़ी इकोनॉमीज हैं। आई मीन द बिगेस्ट वन इज डेफिनेटली जर्मनी। तो अगर यहां पे प्रॉब्लम्स हैं तो उसके असर जो है पूरे यूरोपियन यूनियन में अब देखे जाएंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से थी वो ये थी कि टॉप डिप्लोमैट्स जो हैं फ्रॉम 8 अरब लीग कंट्रीज, उन्होंने एग्री किया है। जॉर्डन के जो शहर अकाबा था वहां पे एक मीटिंग हो रही थी, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि ये जो पीसफुल ट्रांजिशन प्रोसेस जो है सीरिया के अंदर होना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इराक, लेबनान, इजिप्ट, यूएई, बहरेन एंड कतर, उन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि तमाम पॉलिटिकल और सोशल फोर्सेस जो हैं वो नई गवर्नमेंट के अंदर नजर आनी चाहिए, और यहां पे बिल्कुल एथनिक, सेक्टेरियन और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा यहां पे सिटीजन के साथ जस्टिस और इक्विटी के साथ आप पेश आए, और ये जो भी कोई पॉलिटिकल प्रोसेस है इसको फिर यूनाइटेड नेशंस भी और अरब लीग जो है वो सपोर्ट करेगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2254, जिसमें कि एक रोड मैप दिया गया था फॉर निगोशिएटेड सेटलमेंट, और जिसमें कि ये भी कहा गया था कि भाई इमीडिएटली जो है यहां पे ये मार कुटाई रोकें और जो है यहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। इसके साथ साथ जो है यहां पे मौजूद थे आज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, यूएन स्पेशल एनवॉय फॉर सीरिया गीर पेडरसन, यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कैलस, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान, क्योंकि आपको पता ही है कि ट्रंप साहब ने कहा है कि तुर्की जो है वो बहुत ज्यादा यहां पे मेन रोल प्ले करेगा सीरिया के जो गवर्नमेंट के सेटलमेंट है। इसके साथ साथ तुर्की, कतर, सऊदी अरेबिया ने बहुत ज्यादा कंडेम किया है इसराइल जो अपने सेटलमेंट्स एक्सपैंड करता जा रहा है गोलान हाइट्स के अंदर। उन्होंने कहा जी कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो अंडरमाइन करेंगे पीस स्टेबिलिटी एफर्ट्स इन सीरिया, और उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा है कि भाई इसके ऊपर आप थोड़ा सा गौर करो। इसके साथ साथ यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डेविड लेमी, उन्होंने भी कहा है कि मैं सीरिया में जाकर इंटरिम गवर्नमेंट के साथ मुलाकात करूंगा। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने अब एक्नॉलेज किया है कि वो हयात तहरीर अल शाम के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं, जो कि सीरियन ऑपोजिशन ग्रुप है, जिसने कि आपको पता है ये टॉपल किया था बशार अल असद की गवर्नमेंट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो है उन्होंने कहा है पहली दफा के जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं जिशान वही वाली तस्वीर दिखाएं जो आप पहले दिखा रहे थे एंथनी ब्लिंकन की, यस एंथनी ब्लिंकन साहब जो हैं वो अब बातचीत कर रहे हैं तुर्की के साथ भी और इनके साथ भी, और उन्होंने कहा है जी कि ये जो है हयात तहरीर अल शाम, इसको वैसे तो यूएस ने आपको पता ही है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का खिताब दिया था 2018 में, और अवॉइड करते हैं वो फिर इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ बातचीत करना। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आज जो जिस वक्त अकाबा जॉर्डन के अंदर थे, तो उन्होंने कहा जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा डेफिनेटली हम उनके साथ बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो जो ये तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं हकान फिदान, उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि यहां पे जो है एक फ्यूचर गवर्नमेंट कैसे लाई जा सके। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने तुर्की को बताया कि हमारा जो गोल है यूएसए का वो एक अच्छे फ्यूचर का है सीरिया में, और हम चाहते हैं कि वहां पे सिटीजन जो हैं वो फ्रीली रहें। और इसके साथ साथ उन्होंने आज वहां पे गुहार भी एक लगाई, उन्होंने कहा जी कि ये एक फ्रीलांस अमेरिकन जर्नलिस्ट था ऑस्टिन टाइस, جو کہ مسنگ ہے سیریا کے اندر وائل ہی واز رپورٹنگ ان 2012. تو ہم آپ سب کی ہیلپ چاہتے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے. اس نے کہا جی کہ میری ٹیم اور HTS جو ہے ان کے بیچ میں جو ہے ایک سیٹ آف پرنسپلز رکھے جائیں گے کہ یو ایس یونائیٹڈ نیشنز ای یو ترکیے اور 8 عرب لیگ کے جو کنٹریز ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں ایک پیسفل گورنمنٹ ٹرانزیشن پروسیس. تو اس کے اوپر آج ساری جو ہے اینتھنی بلنکن صاحب نے بات کی. ماسایوشی سون یہ جو سی او ہیں ایک کمپنی کے انہوں نے اناؤنس کیا ہے جی 100 billion US ڈالر انویسٹمنٹ ان یو ایس ان دا نیکسٹ 4 years ڈیورنگ ہز وزٹ ٹو ٹرمپس ریزیڈینس مارا لاگو ان پام بیچ فلوریڈا میں. یہ جو بلینئر انویسٹر ہیں ہی از دا فاؤنڈر آف جاپنیز ٹیک انویسٹنگ کمپنی جنہوں نے کہ یہ کہا ہے کہ ہم یہاں پہ نہ صرف انویسٹمنٹ کریں گے بلکہ 100,000 جابز جو ہیں وہ بھی کریٹ کریں گے فوکسڈ آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ انفراسٹرکچر. اور یہ سارے کا سارا پیسہ جو تھا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اینڈ آف دا جو ٹرمپ ٹرم ہے اس سب کے اندر ہم یہ ادھر لگا دیں گے. یہ شو کرتا ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ شو کرتا ہے کہ ہمارا کانفیڈینس ہے یو ایس اکانومی کے اندر جو کہ ٹرمپ صاحب کی وکٹری سے ہمارا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے کانفیڈینس. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ڈبل ڈاؤن پریزیڈنٹ ہیں اور ہم بھی ایفرٹس کریں گے ڈبل ڈاؤن کرنے کی. سافٹ بینک والوں کا جو بیٹے تھے وہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ پہلے 2016 میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا ٹرمپ صاحب کو کہ جی جب پہلی دفعہ یہ پریزیڈنٹ بنے تھے کہ ہم 50 billion یو ایس ڈالرز یہاں پہ انویسٹ کریں گے اور 50,000 جابز ہم جو ہے وہ کریٹ کریں گے, لیکن اب انہوں نے یہ جو ہے نمبر 100 billion کر دیا ہے. ٹرمپ صاحب نے بھی کہا کہ اٹس اے ہیوج ہیوج ہسٹورک اناؤنسمنٹ اور یہ شو کرتا ہے الیکشن کے بعد کہ اب یو ایس کے اندر لوگوں کا آپٹیمزم ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ کنٹری ان کو کچھ واپس کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یو کے کی گورنمنٹ نے بھی آج ایک ہسٹورک کام کیا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کیا تھا. انہوں نے دے ہیو گیون گو ہیڈ فار دا سیل آف رائل میلز پیٹنٹ کمپنی ٹو اے چیک جو ہے بلینئر کو. پوسٹل سروسز جو ہیں وہ اب ایک فورن اونرشپ میں چلی جائیں گی فار دا فرسٹ ٹائم ان 500 year ہسٹری آف بریٹن. 4.6 billion یو ایس ڈالر کا یہ جو ٹیک اوور ہے آف رائل میل اس کو لیا ہے انٹرنیشنل ڈسٹریبیوشن سروسز جس کے مالک ہیں بلینئر ڈینیل کریٹنسکی کا جو ای پی گروپ ہے اور اس کو جو ہے یہ بیچا گیا. کریٹنسکی جو ہیں ان کا آئی ڈی ایس نے کے ساتھ اگریمنٹ ان کا کیا تھا انہوں نے مے کے اندر اور وہ اب آفیشیل اپروول کا ویٹ کر رہے تھے انڈر نیشنل سیکورٹی لاز اور جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پوسٹل سروسز کے لیے یو کے میں. اور آج جو ہے یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوا تو آج جناب یہ پھر سارے جو چیزیں ہیں یہ ان کے حوالے کی گئی ہیں. اچھا جناب دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی چوپڑا جیولرز. یہاں پہ بڑی زبردست وہ کہتے ہیں جی گولڈ سلور ڈائمنڈ پلیٹینم کی ہم جیولری دیتے ہیں, ایلیگنٹ اور یونیک ڈیزائنز ہیں. آپ کو زیادہ انفارمیشن چاہیے تو آپ ان کو کال کر سکتے ہیں ایٹ 4167447534. یہ جو ہے ایلبین روڈ ٹوبیکو میں لوکیٹڈ ہیں. لائف ٹائم گروپ کے جناب پریزیڈنٹ عدنان الوی صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کو آر آر ایس پی آر ای ایس پی سپر ویزا کچھ بھی آپ کو چاہیے ٹریول انشورنس تو آپ مجھے کال کریں. یہ جو ہیں 6705 ٹامکن روڈ میں پہ ہیں مسز ساگا میں, آپ ان کو کال کر سکتے ہیں 4163010249. اینڈ جناب الحبیب ٹریول وہ کہتے ہیں جی کہ پی آئی اے کے نیو ایئر کے سیٹ سیلز جو ہیں وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں, 10% آپ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں انٹل 20th of December. اور اگر آپ کو زیادہ انفارمیشن چاہیے تو آپ ان کو کال کریں ایٹ 9055547786. اینڈ پائل جیولرز یہاں پہ ہوتے ہیں اسلم بھائی اور وہ کہتے ہیں جی زبردست قسم کی یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ جیولری ہے ہر طرح کی. اور یہاں پہ آپ کو کسی طرح کی بھی گولڈ سلور کی جیولری چاہیے جو کہ انسپائرڈ ہے فرام دبئی سنگاپور انڈیا پاکستان کے ڈیزائن سے تو آپ ان کو کال کریں 9057907879. ٹھیک ہے جی ایسے ہے. اچھا جناب پاکستان کے اندر تو آج آبزرو کیا گیا 10th anniversary آف وکٹمز آف آرمی پبلک اسکول. 10 سال پہلے ایک باربیرک جو اٹیک کیا گیا تھا اے پی ایس کے اوپر کے پی میں جس میں کہ اسکول نے ٹیررزم فیس کی تھی और वैसे तो अभी भी सूबे के अंदर टेररिज्म चल रही है, कोई उसका वो हल नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो है वो उस वक्त जो था वो ज्यादा खतरनाक इसलिए था क्योंकि उसमें मासूम बच्चे जो थे उनको मारा गया था। प्रेसिडेंट जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बड़े रिच ट्रिब्यूट दिए हैं मार्टर्स को, और आज केपी के अंदर जो है सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट की गई थी ऑन द एनिवर्सरी ऑफ दिसंबर 16, 2014 टेररिस्ट अटैक। डिफरेंट स्कूल्स के अंदर फंक्शंस हुए, दूसरी जगहों के ऊपर भी फंक्शंस हुए, कुरान खानी जो थी वो भी की गई। 147 इंक्लूडिंग 132 स्कूल किड्स वर किल्ड और बहुत सारे दूसरे जो थे वो जख्मी हुए थे। व्हेन सिक्स टेररिस्ट ब्रोक इन एपीएस ऑन वर्सक रोड और उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की थी, बहुत से यंग बच्चे टीचर स्टाफ इसके अंदर डेथ हुए थे, जिसको कि बहुत ज्यादा न सिर्फ मुल्क में बल्कि इंटरनेशनली भी कंडेम किया गया था। और आज प्रेसिडेंट और पीएम ने भी जो है उसका जिक्र किया है। अच्छा जनाब, ये जो है अब बड़ी एक तो ये खतरे में नाकवी खबर पाकिस्तान के लिए हो सकती है, और कुछ कुछ आपको समझ में आना शुरू शायद हो जाए कि ये अब क्या चिकर है। वीकेंड के ऊपर ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने जो है वो रिचर्ड ग्रेनो को बनाया है स्पेशल एनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस फॉर नॉर्थ कोरिया एंड वेनेजुएला। रिचर्ड ग्रेनल, अगर आपको पता हो कि ये ट्रंप साहब के बड़े लॉयलिस्ट हैं और इनके फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं 2017 से 2021 में, तो आप सोच सकते हैं कि बहुत स्पेशल यानी नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला दिया गया है, और भी इसमें शायद शामिल करेंगे, हो सकता है ईरान शामिल करें, पाकिस्तान शामिल करें। और इन्होंने रिचर्ड ग्रेनल ने कहा है जो कुछ अरसा पहले ट्वीट्स डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था रिलीज इमरान खान, उसके बाद रिचर्ड ग्रेनल ने कहा था कि मुझे लगता है कि इमरान खान और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी एक जैसी हिस्ट्री और किस्मत चल रही है, उनके खिलाफ भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए गए थे और इमरान खान के खिलाफ भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस जो हैं वो बनाए गए हैं। ये बात उन्होंने उस वक्त अपने एक्स पे की जब ये एक रीपोस्ट कर रहे थे ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट ऑन पीटीआई प्रोटेस्ट, जिसमें कि बेतहाशा पाकिस्तान गवर्नमेंट के जुल्म की वो जो है वो बात कर रहे थे कि ये जी मोर्चा निकाला इसलिए गया था कि इमरान खान साहब को जो है वो फ्री किया जाए, जबकि लोगों के ऊपर फिर वहां पे गोली चलाई गई। खान जो है आपको पता ही है कि 2022 में जब उनकी गवर्नमेंट गई थी तो उन्होंने कहा था कि ये साइफर एक लहराते हुए कि यूएस डिप्लोमेट डोनाल्ड लू ने मेरी गवर्नमेंट जो है वो हटाई है। तो अब जो है रिचर्ड ग्रेनल, चूंकि वो कह रहे हैं कि भाई इसके साथ वही हुआ है जो ट्रंप साहब के साथ हुआ है, तो क्या उसका आमिर खान साहब आ सकता है, तुम्हें मैंने आमिर खान कहा है, उसका कुछ असर आ सकता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे? क्या लोगों की कांपें टांग रही हैं पाकिस्तान में, क्योंकि इसको फिर से बहुत बड़ा जो है ये ओहदा दिया है। एनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस, ये स्पेशल मिशन जो है अब क्या है और किधर दिखाएंगे उसका पता नहीं। इसके साथ साथ कांग्रेस वुमन राशिदा तालिब जो है फ्रॉम मिशिगन, उन्होंने भी ये जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ रिप्रेशन दिखाया गया था और ये जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ गया उसको बड़ा कंडेम किया। उन्होंने कहा जी आई स्टैंड विद पाकिस्तानीज हु हैव बीन राइजिंग एंड प्रोटेस्टिंग फॉर चेंज। कांग्रेस वुमन बारबरा ली जो है हु इज द को चेयर ऑफ ह्यूमन राइट्स कॉकस, उन्होंने भी कहा कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम टू पीसफुल प्रोटेस्ट है ये किसी भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है, जो कि यूएस और पाकिस्तान और सारी दुनिया जो इसको होल्ड करते हैं तो यहां पे भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस मैन रोक खन्ना जो है उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ा डीपली कंसर्न्ड हूं कि पाकिस्तान जो है ये बार बार इंटरनेट जो है वो काट देता है, रोड्स ब्लॉक करता है, अबडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, तो ये क्या चल रहा है जी, उनका ये कहने का मतलब था। रिप्रेजेंटेटिव जो है समर ली, उन्होंने भी पाकिस्तानियों की रेजिलियंस को बड़ा सलाम पेश किया और उन्होंने कहा जी कि ये कॉन्स्टेंटली इलेक्टोरल इंटेग्रिटी और जुडिशियल फेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं और हम बड़ा कंडेम करते हैं ये जो सप्रेस करने के लिए लोगों को के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके लिए जो ये वायलेंस की गई है आम लोगों के खिलाफ, ये बड़ा खराब है। कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन ने भी कहा कि ये जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं इनको फौरन खत्म करने की जरूरत है। इसके साथ साथ कुछ अरसा पहले ब्रैड शर्मन ने यह भी कहा था कि इमरान खान को छोड़ो। तो जनाब ये कुछ चेंजेस जो हैं ये जरा गौर से देखी जाएंगी, हैं जी ऐसा है। पीटीआई लीडर शीरी मजारी और 8 अदर्स जो हैं उनको आज जो है इंडाइट किया गया है बाय एंटी टेररिस्ट कोर्ट फॉर जीएचक्यू अटैक केस। 9 अदर सस्पेक्ट्स जिनको के कहा गया था कि जी वो इसमें इन्वॉल्व थे वो हैं राशिद हाफिज, खादिम हुसैन खोकर, जकीर उल्ला عظیم اللہ طارق صادق مہر جاوید چودھری آصف اور منیر ان سب نے ناٹ گلٹی پلیڈ کیا تھا. آج ہیرنگ جو تھی اس کو پریزائڈ کر رہے تھے اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ ایٹ میک شفٹ کورٹ ان اڈیالہ جیل. خان صاحب جو ہیں ان کو بھی پروڈیوس کیا گیا تھا جج کے سامنے. شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو لاہور کے کوٹ لکھپت جیل سے لایا گیا کیونکہ وہ وہاں پہ ہیں. خان صاحب اڈیالہ جیل میں اور یہ کوٹ لکھپت جیل میں ہیں. پروسیکیوشن کے جو لائرز ہیں انہوں نے کہا تھا جی کہ ان سب کی جو بیلز ہیں وہ کینسل کی جائیں, ان سب کی جو کہ ہیئرنگ سکپ کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈیلیبریٹلی جو ٹرائل ہے اس کو لمبا کر رہے ہیں. کورٹ نے یہ ایکسپٹ کیا ان کا پلی اور انہوں نے کہا جی کہ اچھا ٹھیک ہے کہ اب ہم ڈسمبر 19 کو ہیئرنگ جو ہے وہ پھر سے کریں گے. ایک اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہے اسلام آباد میں اس نے ڈسچارج کیا ہے 78 مور سسپیکٹس کو ان کیسز ریلیٹڈ ٹو پی ٹی آئی نومبر 26 پروٹیسٹ کیس. اس کے اندر جو ہے انہوں نے پولیس کو آرڈر دیا ہے کہ جن کو ہم ریلیز کر رہے ہیں ان کو بالکل آپ نے ری اریسٹ نہیں کرنا ہے. آفیشلز آف فور پولیس اسٹیشنز آف اسلام آباد پروڈیوسڈ آل ٹوگیدر 283 سسپیکٹس بفور اے ٹی سی جج طاہر عباس سپرا. ایڈوکیٹ انصار کیانا جو ہیں وہ ان ڈیٹینیز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اس کے لیے ان کو جو ہے دو دن کا ریمانڈ دیا گیا سہالا پولیس جس نے کہ 31 لوگوں کو جو تھا وہ پروڈیوس کیا تھا اور ایکسٹینشن مانگی تھی. اے ڈی سی جج نے جو پلیز تھیں بہرحال جو لوگوں کی وہ کینسل کر دی تھی اور ان کو کہا تھا جی کہ ان کو جوڈیشل جو ہے وہ ریمانڈ میں رکھیں. پارا پولیس اسٹیشن میں 94 لوگ سامنے لائے گئے تھے اور انہوں نے بھی فزیکل ریمانڈ مانگا. اے ڈی سی جج نے کہا کہ یہ جو 90 جو لوگ ہیں ان کو دو دن کے فزیکل ریمانڈ پر رکھیں. چار کے بارے میں انہوں نے کہا جی ان کو ڈسچارج کریں. آفیشلز آف ترنول پولیس اسٹیشن 63 لوگوں کو لائے اور انہوں نے بھی دو دن کا فزیکل ریمانڈ مانگا. اس میں سے ڈسچارج کیے گئے 57 اور 6 کو کہا گیا کہ آپ ریمانڈ میں لے سکتے ہیں. 95 پروڈیوس کیے تھے کراچی کمپنی پولیس اسٹیشن نے ٹو ڈفرنٹ کیسز. کورٹ نے ڈسچارج کیا 9 کو, باقیوں کے لیے 2 ڈے فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ بولا 3 لوگوں کے لیے. اے ٹی سی نے جو ہے انہوں نے ڈسچارج کیے 8 لوگوں کو اور 75 کو انہوں نے کہا جی کہ آپ پولیس کے 3 دن کے فزیکل ریمانڈ پہ رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سپرا نے کہا جی کہ جو انڈر ایج بچے جو آپ نے پکڑے ہیں اس پروٹیسٹ میں ان کی مجھے ڈیٹیلز دیں, جن کو ڈیٹین کیا ان کو فوراً چھوڑنا چاہیے. پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں جی اب ایجپٹ جا رہے ہیں ڈسمبر 18 سے 20 کے بیچ میں ٹو پارٹیسپیٹ ان 11th سمٹ آف ڈیولپنگ اے D8 کنٹریز جو ہیں ان کائرو میں, جس میں کہ جس کا کہ تھیم ہے انویسٹنگ ان یوتھ سپورٹنگ ایس ایم ایز شیپنگ ٹوموروز اکانومی. اور اس کے اندر جو فارن آفس کے سپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر وہ یوتھ کی ایس ایم ای کی انکلوسیو اکانومی جابز انوویشن اور لوکل انٹرپرینیورشپ کی بات کریں گے. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان از کمیٹڈ ٹو اٹس آئیڈیلز اینڈ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بیچ میں اور زیادہ کلوز ریلیشن شپس ہونے چاہیے ٹو پروموٹ کوآپریشن پراسپیرٹی فوڈ سیکورٹی ٹوریزم. اور سائڈ لائنز کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں باقی لیڈرز کے ساتھ بھی ہوئیں گی. ڈیپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر سینیٹر اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی 21st سیشن آف D8 کاؤنسل آف منسٹرز اٹینڈ کریں گے آن ڈسمبر 18th. جناب آج ہے ڈسمبر 16 1971 میں ہوا تھا فال آف ڈھاکہ. وہ زخم جن کے لیے ہم آج بھی رو رہے ہیں, اس وقت یہ تھا ایسٹ پاکستان جس نے کہ ڈکلیئر کی تھی انڈیپینڈنس آفٹر اے ڈیوسٹیٹنگ وار جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی کریشن ہوئی تھی. فال آف ڈھاکہ جو ہے وہ ایک صرف ہسٹورک ایونٹ ہی نہیں ہے, اس میں بہت سارے لیسنز ہیں لرن کرنے کے لیے جو ہم ابھی تک بھی نہیں کر رہے ہیں. اس میں لیسن تھا نیشن بلڈنگ کا, ایتھنک ٹینشنز کو کم کرنے کا اور ایکسٹرنل انٹرفیئرنس کو ختم کرنے کا. 50 ایئرز لیٹر آج بھی ہمارے جو ملک کے اندر اس کے ایکو جو ہے اس تکلیف کے سنے جاتے ہیں لیکن پرابلمز ابھی بھی وہی ہیں. 1971 کا یہ جو کرائسس تھا اس کے روٹس جو تھے بہت زیادہ جو ڈویژن تھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں اور سینٹرلائزیشن آف پاور جو تھی وہ ویسٹ پاکستان کے اندر تھی اور ایک سینس آف ڈس انفرانچائزمنٹ جو تھی وہ ایسٹ کے اندر تھی اور بہت سارے گریونسز تھے کہ جو ریسورسز ہیں وہ ہمیں پوری طرح سے نہیں دیے جاتے ہیں, پولیٹیکل ریپرزینٹیشن پراپر نہیں دی جاتی, ملٹری میں بھی پریزنس جو تھی وہ بہت زیادہ کم تھی. ان کی سچویشن جو تھی 1970 میں بہت زیادہ خراب ہوتی گئی اس وقت جس وقت شیخ مجیب الرحمان کی عوامی پارٹی نے ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری لی لیکن جو ہماری ماشاءاللہ سے ذوالفقار علی بھٹو کی جو پی 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 تھی اور جو ملٹری الیٹ تھی انہوں نے ڈینائی کیا ان کو کہ ان کو پاور نہیں دیا جائے گا جس کی وجہ سے یہ ٹریجڈی آئی. انڈین بیک مکتی بانی جو تھی پھر اس نے بھی بڑا رول پلے کیا اس کے اندر. और पाक आर्मी का जो एक्शन थे, जो मारा पीटा, फिर उन्होंने अपने ही लोगों को यहां पे उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। रूमर्स ये थे कि 3 मिलियन बंगालीज को पाकिस्तान मिलिट्री ने मारा है, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये ख्याल था, इंक्लूडिंग शर्मिला बोस, जिन्होंने अपनी बुक डेड रेकनिंग के अंदर लिखा है कि ये बिल्कुल फिगर एग्जेजरेटेड थी। उन्होंने कहा 50,000 से 1,00,000 बंदा जो था उसको मारा गया था, और इसके साथ साथ लेकिन जो मुक्ति बानी ने भी कोई बंदे जो मारे थे उनका जो तकरीबन 500,000 के करीब जो बिहारी मुसलमान थे खास तौर पे जो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, उसका कोई भी जिक्र नहीं करता है। बहरहाल जी, फॉल ऑफ ढाका जो है इट इज स्टिल अ डीप वूंड, पाकिस्तान का जो नेशनल कॉन्शियसनेस है, जब आप लालची हो जाते हैं पावर के लिए तो फिर यही कुछ होता है, जब आप अपने मुल्क में ही अपने ही लोगों को मारते हैं और उनको उनका हक नहीं देते तो फिर ये ऐसा ही होता है। ये बहुत बड़ी जो है डिफीट थी पाकिस्तान की आइडेंटिटी और उसका जो एम्बिशन फॉर यूनिटी था उसके ऊपर। जाहिर है कि जिन्ना साहब ने मुल्क को इसलिए नहीं बनाया था, लेकिन इन्हों का पुट्टो जड़ा है वो मरदा ही नहीं पिया जी, पुट्टो आज भी जिंदा है, तो अब क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो जनाब जो चल रहा है वो है ही, लेकिन हिंदुस्तान में भी चीजें काफी गर्माई हुई हैं। इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करते हुए मोदी जी जो हैं उन्होंने आज कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह मैं भी ये बिलीव करता हूं कि इंडिया वाज नॉट बोर्न ऑन इन 1947। हम तो जिस वक्त से हमारी रिप्रेजेंटेशन है सिविलाइजेशन की, उस वक्त से हम जो हैं अपने आप को समझते हैं कि इंडिया जो था इट वॉज बोर्न देन। उन्होंने कहा जी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मोहब्बत है वो हमारे जो थॉट प्रोसेस है उससे चलती है, जबकि कांग्रेस की कोई इज्जत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसीलिए इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और इन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई थी आर्टिकल 19 की 1951, और उसके बाद ये लोग आर्टिकल 370 लेकर आए थे जिसने कि अलाउ किया था जम्मू और कश्मीर को टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उन्होंने अपनी बहुत सारी जो गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम्स हैं उनके बारे में बात की। उन्होंने कहा जी कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो फ्री राशन देती है, एलपीजी सिलेंडर देती है, उसने टॉयलेट्स दिए हैं लोगों को, घर दिए हैं, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दी है, और एम्पावर किया है मार्जिनलाइज ग्रुप्स लाइक वुमेन, ओबीसी, दलित और आदिवासियों को। उन्होंने कहा जी कि गांधी फैमिली जो है उसने हाईजैक कर लिया है कांग्रेस को और वो बिल्कुल लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करती है, खासतौर पे वो जो रॉयल फैमिली से ताल्लुक ना रखते हों। कांग्रेस का कोई राइट नहीं बनता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करे, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को और उसकी स्पिरिट को वायलेट किया है, एंड दे हैव टेस्टेड ब्लड। वो कहते हैं जी कि खुद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक दफा कहा था कि यूपीए की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर यानी मेरे पास ताकत नहीं है, ताकत एक बंदे के पास है, यानी जाहिर है कि वो सोनिया गांधी की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ये जो राहुल गांधी है ये एक इंतहाई एरोगेंट है अपनी डायनेस्टी का पर्सन, और ये जो है ये आप देखें कि ये कैसे बिहेव करता है। गांधी जो है वो कहते हैं जी कि ये वो था जिसने के मनमोहन सिंह का जो कैबिनेट के अंदर ऑर्डिनेंस आया था 2013 में, जिसमें के उसके खिलाफ ये बोले थे, क्योंकि फिर वो जो इनके पार्टी के अंदर कॉन्विक्ट्स जो थे वो 3 MPs उनको थोड़ा टाइम मिल गया था अपनी सीट को बचाने के लिए। तो ये कैसे रूल ऑफ लॉ और उसकी बात कर सकते हैं, जाहिर है जी अगला ने भी खामोश नहीं सी बैठना। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर बहुत ही शार्प अटैक किया मोदी जी के ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि तुम इतना झूठ बोलते हो जितना के नाट्सीज भी झूठ नहीं बोलते थे। नाट्सी प्रोपोगेंडा मिनिस्टर जो था जोसेफ गोबेल, वो उसको बोला जाता था कि वो झूठ फैलाता था, लेकिन तुम तो उससे भी आगे बढ़ गए हो झूठ फैलाने में, और सवाए झूठ फैलाने के तुम कुछ भी नहीं करते हो। पायन, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन आमिर साहब, ये क्या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और जनाब बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो अब राजस्थान में क्या कर रही है ना आमिर साहब, वो ये कर रही है, वो कह रही है कि पुलिस में, पुलिस की किताबों में जितने उर्दू के वर्ड हैं उसको हटाया जाए। हमारा मुल्क उर्दू नहीं है, हमारा मुल्क हिंदी कंट्री है, हिंदी कंट्री है, तो हिंदी के वर्ड्स लाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा जी कि मैंने स्टेट डिपार्टमेंट को कहा है कि जनाब ये उर्दू के वर्ड्स हटाए जाओ और उनको पॉसिबल हिंदी के वर्ड्स के साथ रिप्लेस किया जाए। ये बात जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम डिपार्टमेंट जवाहर सिंह बद्दम ने एक लेटर में डीजीपी यू आर साहो को लिखा है, उन्होंने कहा जी कि ये जो उर्दू फारसी अरबी जो है ये तो मुगल एरा में शुरू हुए थे, ये तो ये मुगल एरा की चीजों को हमको खत्म करने की जरूरत है। उस जमाने में उर्दू बोली जाने लगी थी और फिर स्कूल्स में भी लगा दी थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमने बहुत कुछ जो चेंज करने की कोशिश की लेकिन उर्दू की पॉलिसी जो है वो नहीं कर सके, और जो है इसलिए अब मैं इसको देख रहा हूं और अब मैं इसको चेंज करूंगा। उन्होंने कहा जी कि हिंदी जो है उसका ज्यादा यूज होता है और संस्कृत जो है वो थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज है, और खासतौर पर मैंने जो पुलिस के अफसरों से पूछा तो वो कहते हैं जी हम तो हिंदी ही बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलते हैं, तो अगर बोलते नहीं है तो उर्दू को हटाओ और हिंदी जो है वो सब जगह पे लेकर आओ, और हम वी मस्ट ब्रिंग दिस चेंज। उन्होंने कहा जी मैं चीफ मिनिस्टर के साथ भी जो है वो बातचीत करूंगा और मैं मेक श्योर करूंगा कि सिर्फ शुद्ध हिंदी यानी कि जो है बिल्कुल जो है साफ शफाफ हिंदी का यूज किया जाए और दूसरा उर्दू नहीं बोला जाए। है जी ऐसा है। अच्छा जी, पंजाबी सिंगर जो है रंजीत बावा, आपको मालूम ही है बड़े वो फेमस हैं, उनका अब जनाब तीसरा जो कॉन्सर्ट था वो भी कैंसल हो गया है हिमाचल प्रदेश में। उसकी वजह यह है कि हिंदू कम्युनिटी कहती है कि इसने हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है विद दिस सॉन्ग मेरा की कसूर, और उन्होंने आज बड़ी माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद इस जो सॉन्ग है उससे किसी को इंटेंशनली जो है वो हर्ट करना नहीं था, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूं। और जब ये इनका अब नाला घर के अंदर तीसरा जब ये शो कैंसिल हुआ है हिमाचल प्रदेश में, तो उन्होंने कहा कुछ लोग नफरत फैलाने का कोशिश कर रहे हैं और रिलीजन और पॉलिटिक्स से डिवाइड कर रहे हैं लोगों को। उन्होंने अपील की हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को कि आप इंटरवीन करो और आप देखो मेरे शो को बार बार क्यों कैंसिल कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है लोगों को ज्वाइन यूनाइट करना, उसमें डिविजन लाना नहीं होता है। हम हर धर्म की इज्जत करते हैं लेकिन कुछ लोग जो है हिंदू सिख के बीच में प्रॉब्लम्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जनाब एक मुद्दा तो उठा द ग्रेट कपिल शर्मा शो में भी, क्योंकि क्या हुआ ना वहां पे आगे फिल्म मेकर एटली, अब जब एटली आए अपनी नई फिल्म बेबी जॉन को प्रमोट करने के लिए, तो आपको तो मालूम ही है कपिल शर्मा कितना नाटी है। उसने जो है जो बात की उससे जनता भड़क गई। सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, कुछ दूसरे लोगों ने भी कहा कि कपिल के जो कमेंट्स थे इंतहाई डेरोगेटरी थे। अच्छा जी, अब कमेंट्स क्या थे? कमेंट्स ये थे कि इसने एटली को पूछा कपिल ने कि जब कोई सितारे आपसे पहली बार मिलने आते हैं तो वो पूछते नहीं है एटली कहाँ है। अब उसका मतलब कुछ भी हो सकता था इससे ना, कि वो देखते होंगे कि आप शायद इम्प्रेसिव नहीं है या आप बड़े डाउन टू अर्थ हैं या जो भी है। बहरहाल लोगों ने इसका गलत मतलब ले लिया, तो एटली ने असल में गलत ले लिया। उसने कहा जी जी मुझे आपके सवाल का समझ में आ रहा है और मैं असल में बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं ए आर मुरुगा दोस्त का जिन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म बनाने दी। आपको पता ही है इसने अभी जो शाहरुख खान की मूवी बनाई थी उसके बारे में बात कर रहे थे। तो वो कहते हैं जी कि मुझे पता है आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा स्क्रिप्ट दिखाओ। जब उनको मैंने स्क्रिप्ट दिखाया तो उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा कि तुम इस काबिल हो कि फिल्म बना सकते हो या तुम्हारा शक्ल कैसा है या क्या है या अपीयरेंस कैसा है। उन्होंने तो ही लव द नरेशन और उनको वो स्क्रिप्ट पसंद आया, तो इसलिए उन्होंने जो है इसके ऊपर राजी हुए और ये फिल्म बनाई। तो असल में लोग कह रहे हैं कि ये जो इसने रिमार्क दिया है शायद इसलिए दिया है कि वो बहुत डार्क स्किन्ड हैं और छोटे से हैं और अनइम्प्रेसिव शायद लगते हैं। अब जिसने इतनी बड़ी फिल्म बनाई तो वो तो आप पता ही हो सही सकता है आपको कि कितना बड़ा जीनियस होएगा। बहरहाल जी वो कपिल शर्मा के कुछ कमेंट्स अच्छे से नहीं ले रहे हैं लोग। है जी ऐसा है। अच्छा जनाब, आमिर खान साहब जो कि आजकल अपनी जो फिल्म है लापता लेडीज जिसको के जिसकी के ऑस्कर 2025 के लिए एंट्री हुई है उसको आजकल प्रमोट कर रहे हैं वो अमेरिका में और दूसरी जगहों पे भी, तो बीबीसी न्यूज ने उनका एक इंटरव्यू लिया जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि आप क्या कहते हैं हिंदी सिनेमा के बारे में। तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो जो है दो तीन साल में एक फिल्म करता हूं और अब मैं सोच रहा हूं कि अब मैं सिर्फ एक फिल्म पर ईयर करूंगा लेकिन मैं बनाऊंगा बहुत सारी फिल्में ऑन स्टोरीज दैट आई लव। फिर महाभारता के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये इतना बड़ा है कि अब मैं डरने लगा हूं कि कुछ गलत ना मेरे से हो जाए, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हम जो इंडियंस हैं हमारे लिए महाभारता जो है बहुत ज्यादा हमारे दिल के करीब है, हमारे खून में ये दौड़ता है और मैं बिल्कुल सही से इसको करना चाहता हूं ताकि मेरी परफॉर्मेंस देखकर हर इंडियन बड़ा प्राउड फील करे और मैं दुनिया को भी दिखाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान क्या है। ओ वेरी गुड 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 जॉब। अच्छा जनाब, इंडिया की जो लड़कियां हैं, अच्छा आप कहते हैं लड़कियों की खबरें, लड़कियों की खबरें सुना रहे हैं, लड़कियां जो है, इंडिया की जो लड़कियों की जो क्रिकेट टीम है उसने 9 विकेटों से पाकिस्तान को हराया इन द ओपनिंग ग्रुप ए मैच ऑफ क्रिकेट काउंसिल्स विमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप जो है। टॉस जीतने के बाद एट ब्यूमस क्रिकेट ओवो पाकिस्तान ने चूज किया टू बैट, लेकिन वो कुछ भी स्कोर बड़ा नहीं कर सके। 20 ओवर्स में लड़कियां 67 रन्स और 7 आउट पे जो था उनका स्कोर था। विकेट कीपर बैटर कोमल खान जो थी वो सिर्फ स्टैंड आउट परफॉर्मर थी फॉर जूफिशान अयाज लेड टीम। उन्होंने 24 बनाए ऑफ 32 बॉल्स विद 4 बाउंड्रीज। इंडियन बॉलर सोनम यादव ने तो जनाब सोनम यादव साहबा ने कमाल कर दिया, 6 रन पे 4 विकेट्स ली इन हर 4 ओवर्स। तो तबाह कर दिए, तबाह कर दिए हैं जी ऐसे है। और जनाब सरफराज अहमद साहब जो हैं उन्होंने अपने जो फॉर्मर टीममेट्स हैं मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम, उनका जो डिसीजन उन्होंने अभी लिया था रिटायर होने का, उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से उसके लिए उनको बहुत मुबारकबाद दी है और उनको गुड विशेस दिए हैं। नहीं मुबारकबाद नहीं थी, गुड विशेस दिए हैं। इन दोनों ने अपना जो था अनाउंसमेंट किया था टू रिटर्न टू इंटरनेशनल क्रिकेट अर्लियर दिस ईयर, और उन्होंने ये भी कहा था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जो वेस्ट इंडीज और यूएसए में हो रहा है उसके लिए अवेलेबल रहेंगे। टूर्नामेंट में फिर इनको लिया गया था। टूर्नामेंट के अंदर आमिर ने टोटल 3 विकेटें ली इन सो मेनी गेम्स और इनकी एवरेज 14.66 रही। इसके अलावा इन्होंने सिर्फ 19 रन्स 2 इनिंग्स के अंदर जो है कंट्रीब्यूट किए। इमाद वसीम अलबत्ता आउटस्टैंडिंग बॉलर रहे पाकिस्तान के लिए, इन्होंने 7 विकेट्स ली इन फोर मैचेस एट एन एवरेज ऑफ 10.28। दोनों ही जो हैं फिर इनको कंसिडर नहीं किया गया था वर्ल्ड कप के बाद इन व्हाइट बॉल असाइनमेंट्स, तो दोनों ने फिर रिजाइन कर दिया था। सरफराज ने कहा जी हैप्पी रिटायरमेंट टू बोथ माय टीममेट्स, ब्रदर्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आपको पता ही है कि ये देवर पॉइंट ऑफ सरफराज जब था कैप्टन था तो उसमें वो जो वर्ल्ड कप हुआ था जो जीते थे ये उसका ये हिस्सा थे, तो उसने कहा। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, लोग बड़े हैरान हैं विराट कोहली के परफॉर्मेंस पे। लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन बैटर एलन बॉर्डर जो हैं वो कह रहे हैं मुझे बड़ी ही हैरत हो रही है कि कोहली जो है उसकी बिलो पार परफॉर्मेंस जो है ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कैसे चल रही है। मुझे लगता है कि ही हैज लॉस्ट हिज एज। उन्होंने कहा जी कि ये रफ पैच से जो है गुजर रहा है। अभी लेटेस्ट भी जो थी इन्होंने 16 बॉल्स पे सिर्फ 3 रन बनाए थे इन द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ 3rd टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और ये काफी स्ट्रगल करते हैं खासतौर पे जो लेफ्ट डिलीवरीज होती हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप उसके लिए। वो कहते हैं जी कि इसके जो डिसमिसल्स भी हुए हैं पिछले 2 साल में वो भी इसने जो है एज किए हैं वाइड डिलीवरीज को, और आज का भी जो मैच चल रहा था उसके अंदर भी ये ऐसे ही आउट हुआ है। नॉर्मली जब ये बेस्ट फॉर्म में होता है तो ये इस तरह की डिलीवरीज को छोड़ देता है। उन्होंने कहा जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके दिमाग में इस वक्त कोहली के क्या चल रहा है। पैजन जो भी चले बात, वो कहते हैं जी मुझे समझ नहीं आ रही सड़कें के साथ क्या हो रहा है, ये इतना ब्रिलियंट स्टार है। इसी तरह जो फॉर्मर ब्रिटिश कैप्टन है माइकल वॉन, उन्होंने भी कहा कि ये बॉर्डर के कंसर्न जो है बिल्कुल ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोहली के साथ क्या हो रहा है। कोहली इज नॉट बीन बोल्ड जफा। अब अगर आपको किरकी की जबान पता है और जैसे ये बोलते हैं जफा, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई डिफिकल्ट बोलिंग भी नहीं इसको करा रहा है फिर भी ये अच्छे से नहीं खेल रहा है, ये व्हाट इज गोइंग ऑन। तो यही हम भी पोड़ना चाहते हैं, कोहली जी क्या हो गया है आपको, हैं क्या हो गया, तुम क्या कर रहे हो, जरा अच्छे से खेलो यार। तो बहरहाल जी ये थी हमारी आज की खबरें।
चलिए जनाब ये थी हमारी आज की गर्मा गर्म और रंगारंग खबरें। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। और अब जो है शाजी से इजाजत लेते हैं। शाजी आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का,
थैंक यू।
और एज यूजुअल इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रहे।
अच्छा जी
तो फिर कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक हो गया,
ठीक है।
चले जनाब सामईन का और नाजरीन का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का, और पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आरफा मुजफ्फर साहबा की तरफ से माई जमान
मैनेजमेंट
की तरफ से आरफा मुजफ्फर साहबा की तरफ से माजिद जमाल साहब की तरफ से हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से इजाजत लेते हैं। मैं आपका होस्ट आमिर अहमद, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही, तो कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।
ठुमक चले है जब तू मेरी नस नस खन के, तू आई है सजनिया सुनाएगी सभी तो चंचल है तेरे नैना देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना
से भीगे चुनर वाली रंग बरसे और खिने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया हो रंग रसिया हो
रंग बरसे अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे